ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम डॉट आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळैयाडल पुराण की पहला भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
अरे उषा, आओ ना, मैं तुम्हारी ही याद कर रही थी। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है।
नमस्ते शांता दीदी,
तुम कैसी हो?
मैं ठीक हूँ। बताइए क्या चल रहा है?
घर पर सब सकुशल है ना? इधर कैसे आना हुआ?
बहुत दिनों आपसे मुलाकात नहीं हुई, सोचा आपसे मिल लूं। आपको मेरे आने से कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है ना?
अरे
लगता है आप किसी काम में व्यस्त हैं।
नहीं नहीं, तुम सही वक्त पर आई हो। मैं बच्चों को शिवजी के तिरुविळैयाडल पुराणम को हिंदी में कहने बैठी हूँ।
अच्छा,
मुझे लगा कि वह एक वार्तालाप के रूप में हो तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे।
जरूर।
तभी मुझे तुम्हारा याद आया। परमज्योति अड़िगल के तिरुविळैयाडल पुराणम तो तुम भी जानती हो ना?
हाँ दीदी, मुझे यह सुझाव बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी मैं एक बात कहूँ?
हाँ बोलो।
जहाँ तक हो सके हम शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करेंगे।
हाँ,
इससे बच्चों को भी साहित्य हिंदी सुनने का अवसर मिलेगा, है ना?
हाँ उषा, तुमने ठीक कहा है। चलो हम इसका शुभ आरंभ करें। क्यों ना हम गोस्वामी तुलसीदास के मंगलाचरण से देवताओं की आराधना करें। तुम्हें और कोई श्लोक याद आ रहा है?
हाँ दीदी, तुलसीदास से मंगलाचरण तो बहुत ही सुंदर है। साथ ही क्यों ना आप भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित शिवानंद लहरी का भी एक श्लोक सुनाएं। मैं बच्चों को दोनों का अर्थ बता दूंगी।
बहुत अच्छा, पहले तुलसीदास की वाणी सुनेंगे। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंदः सर्वत्र वंद्यते।
अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास रूपी पार्वती जी और शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। दीदी अब शिवानंद नगरी सुनाइए ना।
हाँ सुनो। गलंती शंभो त्वच्चरित सरित किल्बिषरजो गलंती दीकुल्य सरणिषु पतन्ति विजयता दिशन्ति संसार भ्रमण परितापोपशमनम् वसन्ति मच्चेतः हृदभुवि शिवानन्दलहरी।
इस श्लोक का तात्पर्य यह है, हे प्रभु आपके पावन चरित्र रूपी नदी से उभरने वाले शिवानंद के तरंग मेरे पापों से दूर को मिटाए, बुद्धि की धारा बनकर संसार रूपी भवर में मेरे मन को जलाने वाले वेदनाओं को बुझाए और मेरे हृदय की चेतना में बस जाए।
उषा तुमने बहुत ही अच्छा कहा है। आज की इस कड़ी में हम मात्र श्रुति स्मृति पुराणों और भगवान की लीलाओं का एक परिचय देंगे। अगले अध्यायों में हम साक्षात तिरुविळैयाडल पुराण को विस्तृत रूप से सुनाएंगे। क्यों, ठीक है ना?
हाँ अच्छा, अब भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करें?
क्यों नहीं, भगवान की लीलाएं अति अद्भुत होती हैं। बच्चों, वैसे तो आप लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं ना? खेल कूद किसे पसंद नहीं है, हर किसी तरह के खेल में आनंद ही आनंद है। वैसे तो पालतू प्राणियाँ जब आपस में खेलते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है, और तो और नन्हे बच्चों के खेल और मुस्कान में दुखी मनुष्य भी अपना दुख दर्द भूल जाता है। बच्चों, आपके मन में छल कपट है ही नहीं, इसलिए आप लोगों की हंसी खुशी में मानो स्वयं भगवान ही हैं।
बच्चों, अगर मानव का खेल ही इतना आनंद दे सकता है तो भगवान का क्या कहना। सच पूछो तो संत महात्मा इस जगत को भी भगवान का खेल मानते हैं, या प्रभु की लीला भी कहते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि ईश्वर के संकल्प मात्र से इस ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसमें चर और अचर वस्तुओं की सृष्टि हुई है। सब बड़ों की बात है, चलिए हम खेल की ही बातें करेंगे। भगवान में भी चल कपट मद मात्सर्य आदि दुर्गुण न होने के कारण उनकी लीलाओं को सुनने में हमें आनंद मिलता है, साथ ही साथ कुछ उपदेश भी सीखने को मिलते हैं।
बिल्कुल, जब कभी हम भगवान के लीलाओं के संबंध में सोचते हैं, तब हमें अवश्य श्री कृष्ण के क्रीड़ाओं की ही याद आती है ना? हाँ, हमें नन्हा सा प्यारा सा कन्हैया ही मन में प्रकट होता है। उसका यशोदा मैया से रूठ जाना, माखन चुराना, गोपियों का वस्त्र अपहरण करना आदि लीलाओं से हम फूले न समाते हैं, है ना?
सिर्फ यही नहीं है,
अच्छा,
ऐसे कई देवताओं की अनेक लीलाएं हमारे पुराणों में प्राप्त है, जिनमें से हम भगवान शिव जी की लीलाएं सुनाएं।
सुनो बच्चों, कोई भी कहानी हो दूसरों को सुनाने से ही अच्छा लगता है ना? कहानी तो ऐसी चीज है जिसे सुनने और सुनाने में दिल भर जाता है। जानते हो, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म तत्वों को अनेक मंत्रों और सूत्रों के द्वारा अपने वंशजों और शिष्यों को सुनाया है। पुराने काल में कागज और कलम आदि उपलब्ध नहीं थी ना, इसीलिए गुरु के मुख द्वारा शिष्य श्रवण करते थे, अतः इसे श्रुति भी कहते हैं। इस प्रकार रटन की पद्धति से ही उस काल में सीखते थे।
लेकिन आम आदमी और बालक बालिकाएं जिन्हें वेद का ज्ञान ही नहीं है, वे कैसे हमारे सनातन धर्म के बारे में परिचित होंगे? अतः खास उनके लिए ऋषि मुनियों ने देव देवताओं से संबंधित कहानियों की रचनाएं की हैं। ऐसी कहानियों में धर्म का बोध भी होता है, इसे स्मृति कहते हैं, यानी श्रुति और स्मृति, ये दोनों ही हमारे सनातन धर्म और कलाचार के अभिन्न अंग है ना दीदी?
ठीक ठीक कहा तुमने उषा। अच्छा, इन कहानियों की जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं, जानती हो उषा?
हाँ दीदी, हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियों का बड़ा ख्याल रखते थे। मानव कैसे अपने जीवन को धर्म के राह में बिताए, ईश्वर की कृपा कैसे पाए, ऐसे नेक जीवन बिताने हेतु सभी मार्गदर्शन दिखाना चाहते थे। इसके लिए भगवान की लीलाओं का सहारा लिया गया है, परिणाम स्वरूप हमें ज्ञान का एक बड़ा भंडार मिला है।
हाँ बच्चों, आपने तो पुराणों के बारे में ही सुना होगा ना? श्रीमद् भागवत पुराण की किताब तो हर घर की पूजा गृह में पाई जाती है। उषा, अब बच्चों को यह बताओ कि ऐसे और भी कौन से पुराण हैं? इन्हें किसने किसको सुनाया और किसने लिखा?
तो सुनो बच्चों, भगवान वेद व्यास जी के प्रकट होने तक इन कहानियों को ऋषि मुनि ही सुनाते थे। अक्सर यज्ञशालाओं में या किसी पुण्य नदी के तट पर एक दूसरे को सुनाते थे। इस व्यवस्था को कर्ण परंपरा कहते हैं। आदि काल में पहले भगवान शिवजी से नंदी देव ने इन पुराणों को सुना। बाद में परम योगी सनक कुमार ने नंदी देव से इन्हें प्राप्त करके श्री व्यास जी को सुनाया था। उन्होंने अपने पुत्र श्री शुकदेव और अन्य शिष्यों को भी सुनाया। दीदी, प्राचीन काल में जिस पत्र पर लिखा करते थे उसका नाम बताइए ना?
उसे ताड़ पत्र कहते हैं उषा। उस पर लोहे की लेखनी से लिखने की परंपरा शुरू हो गई थी। वेद व्यास जी ने सब पुराणों को विधिवत वर्गीकरण करके कुल 18 पुराणों में अंकित किए। कहा जाता है वेद व्यास स्वयं श्री नारायण के ही अवतार थे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। इस तरह हमें एक अनमोल धरोहर मिला है। इनमें से श्रीमद् भागवत पुराण, मार्खंडेय पुराण और स्कंद पुराण बहुत ही प्रचलित हैं।
दीदी, महाभारत इतिहास लिखने का श्रेय गणेश जी और व्यास जी दोनों को है ना? उस मनोहर घटना का वर्णन भी कीजिए ना, बच्चे बहुत पसंद करेंगे।
उषा, अब तुमने गणेश जी का नाम ले ही लिया तो हम उनकी ही कहानी से यह श्री गणेश करेंगे। वह भी बड़ी ही रोचक कहानी है।
लेकिन बच्चों याद रखना, महाभारत एक इतिहास है। उसकी ऐतिहासिक विशेषता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि पर ही भगवत गीता का उपदेश दिया था। आगे सुनाइए दीदी।
अच्छा, यह द्वापर युग की बात है। कुआयों एक दिन श्री वेद व्यास जी अपने कुटीर में विश्राम कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए। उन्होंने कहा, मुनिवर, आने वाले कलयुग में पुण्य कार्यों की कमी और पाप कार्यों की अधिकता होंगी। मनुष्य धर्म मार्ग से भटक जाएगा। महाभारत युद्ध जो अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आपने अपनी आंखों से देखा है। भविष्य मानव के लिए यह महाभारत एक वरदान होगा। बच्चे, बूढ़े या समाज के कोई भी वर्ग इससे सबक सीख सकते हैं। अभी क्या हुआ उषा, तुम बताओ ना।
सर, व्यास जी कुछ सोच कर बोले, भगवान मैं तो एक शुभ कार्य कर सकता हूँ। इनमें वेदों का भी उल्लेख हो सकता है, साथ ही साथ विदुर नीति द्वारा राजाओं के कर्तव्यों को भी विस्तार पूर्वक बता सकता हूँ। परंतु एक समस्या है।
अच्छा,
ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या समस्या है मुनिवर?
मैं बोलूं?
बोलिए ना।
व्यास जी ने उत्तर दिया, यह काम बहुत ही बड़ा है और श्लोकों की गिनती लाखों में होंगी। इसकी परिकल्पना करना, शब्दबद्ध करना और लिखना, ये तीनों काम एक साथ हो जाना चाहिए। कम से कम इसे लिखने के लिए तो किसी और की सहायता चाहिए मुझे।
फिर ब्रह्मा जी कह उठे, बस इतनी सी बात, मैं बालक गणेश से आग्रह करूंगा कि वे आपकी सहायता करें। वे विघ्नहर्ता भी हैं, इसलिए आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी वापस चले गए।
बालक गणपति वहां पधारे और व्यास जी से कहने लगे कि माननीय ऋषिवर, क्या आपने हमें याद किया? मैं किस तरह आपकी सेवा कर सकता हूँ?
व्यास जी बोले, वट, मैं एक जिस इतिहास की रचना करने जा रहा हूँ वह बड़ा विस्तृत है और विशाल भी है। उसे लिखने के लिए मुझे आपका उपहार चाहिए। आप हाथ बढ़ाएंगे ना?
नटखट विनायक ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है। मैं तो अति शीघ्र लिख सकता हूँ, क्षण भर भी रुक नहीं सकता। मेरी कलम रुके नहीं, यही मेरी शर्त है। क्या आप तैयार हैं?
व्यास जी गणपति की नटखटता पर प्रसन्न होगी। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं जो भी कहूँगा उसका तात्पर्य समझ कर ही आपको लिखना होगा।
गणेश जी मान गए और लिखने के लिए तुरंत बैठ गए। कहा जाता है कि गणेश जी ने अपने एक दंत को तोड़कर उसे कलम बनाकर यह इतिहास लिखा था।
अच्छा, इसीलिए गणेश जी ये दंत वाले हो गए है ना दीदी?
हाँ, हाँ, तुमने सुना होगा ना यह श्लोक, अगजानन पद्मार्कम गजाननम अहर्निशम अनेकदम तम भक्तानाम एक दंतम उपास्महे।
हाँ हाँ, मैं हर दिन यह श्लोक कहा करती हूँ। इसका अर्थ है श्री गजानन अगजा यानी देवी पार्वती के मुखमंडल को विकसित करने वाले अर्थ अर्थात सूर्य देते हैं। वे सदा सर्वदा भक्तों को वर देते हैं। देवी एक दंती भी है।
अच्छा, इसी प्रकार महाभारत की रचना आरंभ हुई। बीच बीच में जब भी व्यास जी की कल्पना में कुछ विलंब हुआ तो सूक्ष्म तत्वार्थ देने वाले शब्दों को और श्लोकों को बोल दिए। जब तक श्री विनायक जी ने उसका तात्पर्य समझते तब तक व्यास जी मन में अगले श्लोकों की रचना कर ली। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में 100,000 श्लोकों से अधिक है।
हाँ, इसी तरह व्यास जी और गजानन के जुगलबंदी से महाभारत नाम का यह भव्य इतिहास संपन्न हुआ था। क्यों बच्चों, अच्छा लगा ना यह कहानी? यह भी तो श्री गणेश की लीला है।
हाँ, साथ ही साथ हम गणेश जी से यह भी आग्रह करेंगे उषा कि हमारा यह शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो।
हाँ दीदी, अब आप फिर विड़ियाडर पुराणम से शिव जी की कुछ कहानियाँ सुनाने वाली है ना?
हाँ उषा, मैं कह रही थी ना, 18 पुराणों में से स्कंद पुराण बहुत विस्तृत है और इसमें अनेक देवी देवताओं की लीलाओं का वर्णन है। स्कंद पुराण में 6 संहिताएं हैं, उनमें से शंकर संहिता में ही शिव पुराण का उल्लेख है। इसे संस्कृत में हालास्य महात्म्यम भी कहते हैं। यही गाथाएं तमिल में यानी त्रिविड़ियाडर पुराणम के नाम से जाना जाता है। इसे तमिल में परंजोति अडिगर नामक एक ऋषि ने रचना की। तमिल भाषा में यह बहुत ही विख्यात है।
जी, मेरा एक संदेह है।
बोलो।
वेद व्यास द्वारा संस्कृत में रचित शिव पुराण कैसे तमिल भाषा में प्रसिद्ध हुआ? शायद यही प्रश्न बच्चों के मन में भी होगा ना?
जरूर होगा। इसकी भी एक कहानी है, सुनो। कैलाश में एक दिन शिव जी अपनी पत्नी देवी पार्वती को उनके मन पसंद 5 पर्वतों और उनके महत्वों के बारे में बता रहे थे। सोचो कौन बैठे थे उधर? उनकी गोद में बालक कार्तिकेय बैठे थे, जिन्होंने पूरी कहानी सुन ली थी। फिर कार्तिकेय ने उसे मुनि अगस्त्य को सुनाया। आप तो जानते ही हैं कि अगस्त्य मुनि संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में पंडित थे, इसलिए इस पुराण को अगस्त्य संहिता भी कहते हैं। अगस्त्य ने परंजोदी अडिगल को सुनाया।
अगर ये तमिल भाषा में लिखा गया था तो जिस प्रांत में तमिल की बोली प्रचलित है वही इन लीलाओं की रंग भूमि होने की संभावना है।
बिल्कुल सच।
जहाँ तक मुझे याद है यह प्रांत दक्षिण भारत के मदुरई नगर है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना दीदी?
हाँ, 16 आने सच कह रही हो। शिव जी की लीलाएं तमिलनाडु के मदुरई नगर में ही हुई थी। ये यही पावन नगरी है जहाँ देवी पार्वती मीनाक्षी का रूप धारण कर एक भव्य मंदिर में विराजित है। मदुरई नगर पांड्य देश की राजधानी थी। वहाँ के राजा का नाम था मलयध्वज और रानी का नाम कांचनमाला। उषा, आगे सुनाओ ना।
अच्छा दीदी, बच्चों, राजा मलयध्वज एक उत्तम शिव भक्त था। वह ये संतान के लिए तरसता ताकि अपने काल के उपरांत राज्य के सिंहासन रिक्त न हो। भगवान की कृपा से उन्हें ये सुपुत्री हुई। देवी पार्वती ने ही उस बच्ची का अवतार लिया था। उस सुपुत्री का नाम था तटागता। उसे सब तरह की शिक्षाएं दी गई थी। वह घुड़ सवारी एवं अस्त्र शस्त्र विद्याओं में अभ्यस्त थी।
फिर राजकुमारी हिमालय तक मत्स्य पताका के अधीन दिग्विजय के लिए चल पड़ी। उत्तर भारत में हिमालय तक सभी राज्यों पर विजय प्राप्त की। आगे जब वह हिमालय पहुंची तो देवों का देव महादेव को देखकर लज्जित हो गई, मानो उसे लगा कि उसने अपने वर को ढूंढ लिया हो।
भगवान शिव भी उन्हें देखकर सुप्रसन्न हो गयी, उन्हें आश्वासन दिया और यह भी बताया कि राजकुमारी तथागता स्वयं पार्वती देवी ही है। वे सोम सुंदर के नाम पर राजधानी मदुरई पहुँचे।
उन दोनों के विवाह के पश्चात शिव जी ने दक्षिण भारत में स्थित अपने भक्तों के जीवन में कई लीलाएं की। उन लीलाओं को हम आने वाले कड़ियों में देखेंगे। अच्छा उषा।
अच्छा दीदी।
अब क्यों ना हम एक छोटा सा कीर्तन से इसको संपन्न करेंगे।
जरूर।
नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले, नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय।